प्रेम लाभ भी है तो प्रेम शिक्षक भी है। वो विश्व के आदि मध्यंत का राज समझाते हैं, तो सुप्रीम गुरु भी है। तो ये हो गई सतयुग की दरबार सतगुरु नहीं दरबार होती है ना गुरु की दरबार, इसको लोग क्या कहते हैं उसे गुरु द्वारा। वो है सिर्फ गुरु की निश्चित लोग कहते हैं, और ये है सतगुरु। वहाँ कोई सतगुरु की दरबार नहीं है। श्री श्री 108 कहलाएंगे, सतगुरु लिखा हुआ नहीं होगा। वो लोग सिर्फ गुरु ही कहते हैं, और ये है सतगुरु। पहले बाप, फिर टीचर, फिर सतगुरु। सतगुरु भी सदगति देते हैं, सत्य फिर सत्य ही मिलेगा। गति कैसी देते हैं? सदगति, सच्ची गति। और बाकी गुरु झूठी गति देते हैं क्या? पहले तो गतिवान बने बुद्धि, मन और बुद्धि सही दिशा में जाने वाली, गतिशील बने, जड़त्वमयी न बने। तो मन बुद्धि रूपी आत्मा की ही सदगति पहले देते हैं। पहचान कैसे होगी कि मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति हुई? हाँ, बुद्धि में देह और देह के संबंधों की दुनिया भूलती जाए और ज्ञान का मनन चिंतन मंथन सत संकल्पों का दबाव बढ़ता जाए तो कहेंगे सतगति। व्यर्थ संकल्प और दुष्ट संकल्प नष्ट होते जाए तो कहेंगे सच्ची गति, सदगति। और दुनियादारी ही याद आती रहे, देह और देह के संबंध ही छूटते रहे और उनका ही लगाव एक दूसरे का जाहिर होता रहे, खुद भी समझे कि हम लगाव में जा रहे हैं और दूसरे भी संसर्ग संपर्क में आने वाले समझे कि इनका लगाव है। सदगति कहेंगे या दुर्गति? तो कहेंगे दुर्गति, क्योंकि लगाव होते हैं सीमा में और न्यारापन बनाता है बेहद का विश्व कल्याणकारी। सत्युग त्रेता में तो फिर गुरु होते ही नहीं, क्योंकि बात सब सदगति में है। कोई के दुष्ट संकल्प चलते ही नहीं। एक सतगुरु मिलता है तो बाकी सब गुरुओं का नाम खलास हो जाए। तो प्रेम गुरु हुआ सब गुरुओं का गुरु। जैसे पतियों का पति कहते हैं ना, पति मन रक्षा करने वाला, सबसे ऊंच होने के कारण ऐसी कहते हैं। पतियों का पति, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु, तुम सुप्रीम बाप के पास बैठे हो, इसलिए बैठे हो
बेहद का वर्षा लेने के लिए। यह है बेहद का वर्षा। कौन सा बताया? सचयुग के पहले जन्म में, दूसरे जन्म में, आठवें जन्म में, आठ जन्म होंगे, वो जो वर्षा मिलेगा वो तो फिर भी हद के बाप से मिलेगा, हद का वर्षा मिलेगा, लेकिन ये है बेहद का वर्षा। माना इसका संगम युग स्वर्ग में जो हमें प्राप्ति होने वाली है 21 जन्मों में से पहले जन्म में, वो है सब संकल्पों की गति। वान बुद्धि बन जाए, मन बुद्धि में कोई ऐसा संकल्प मात्र भी उत्पन्न न हो जो बाप के संकल्प के विपरीत संकल्प, चाहे कोई रावण, चाहे कोई माया, कैसा भी रूप धारण करके हमारे सामने क्यों ना आए, हमको बरगलाए, तो भी हम उसकी बातों में ना। वो बाप भी है तो शिक्षक भी है, और ये वर्षा है नई दुनिया अमर लोग के लिए। जो बाप वर्षा देते हैं बेहद का, वो यहाँ रावण की दुनिया, कंजू की दुनिया के लिए नहीं देते हैं, वो कहाँ के लिए वर्षा? नई दुनिया अमर लोग के लिए। अमर लोग की स्थापना करने वाला अमरनाथ यादगार बनी हुई है कहाँ? पहाड़ पर। बहुत ऊंची स्टेज है, चढ़ाई करके जाना पड़ता है और बहुत ठंडी भी। पुरुषार्थ की ठंड लग सकती है, जब सांप का पुरुषार्थ ठंडा होता है तो जो वहां जो चढ़ने वाले हैं उनमें गर्मी आ जाती है। हिम्मत बच्चे मदद बाप, बूढ़ी बूढ़ी बुढ़िया और बूढ़े भी चढ़ जाते हैं, उन्हें भी शक्ति मिल जाती है। तो ये वर्षा है नई दुनिया अमर लोग के लिए, वाइसलेस वर्ल्ड के लिए। कौन सा वर्षा? सब गति, मन बुद्धि रूपी आत्मा की सब गति हो जाए। भले रहे हम कहाँ, रहेंगे तो नरक की दुनिया के अंदर ही, लेकिन नरक की दुनिया के अंदर रहते हुए भी हमको नरक का वर्षा बाप ये बेहद का देते हैं, जो और कोई गुरु मुंशी मात्र नहीं दे सकता। वाइसलेस वर्ल्ड नई दुनिया और द्वितीय वर्ल्ड पुरानी दुनिया को कहा जाता है। द्वितीय वर्ल्ड में संकल्प भी कैसे चलेंगे? द्वितीय विकारी, विषय विकारों वाले, और वाइसलेस वर्ल्ड में संकल्प निर्विकारी शुद्ध संकल्प चलेंगे। सत्य को शिवालय कहा जाता है, मंदिर में जाते हैं आज भी लोग। कलयुग के अंत में जब तमो प्रधानता बहुत बढ़ जाती है तो भी वहां जाकर के मन थोड़े समय के लिए शांत महसूस करता है, भले बुद्धड़ा यादगार है। चैतन्य वहां नहीं बैठा हुआ है, फिर भी इतना प्रभाव है। सतयुग को शिवालय कहा जाता है। कौन सा सतयुग? कौन है 16 कलम? नहीं, 16 कला की परिधि से भी परे जो है संगम की स्वर्ण, जहाँ परमात्मा बाप शिव स्वयं बच्चों के साथ बैठता है, जिसकी यादगार शिवालय बना हुआ है। सतयुग में शिव होगा क्या? सतयुग में शिव नहीं होगा। शिवालय कहा जाता है क्योंकि शिव बाबा का स्थापन किया हुआ है। शिवालय में क्या स्थापना होती है? शिवालय में क्या होता है? जो यादगार शिवालय बना हुआ है उसमें होता क्या है? शिवलिंग होता है और शिवलिंग के साथ जलाधारी होती है और आसपास सब देवताएं बैठे हुए होते हैं। उसका नाम दिया है शिवालय। माने सब एक की रह में रह मिलाने वाले हैं, सब एक की तरफ सन्मुख हुए बैठे हैं। उस एक से कोई विमुख विपरीत संकल्प मात्र भी चलाने वाला नहीं है, तो उसको कहा जाता है शिवालय। और वैश्यालय में क्या होता है? वैश्यालय में सब विषय विकारी, सब एक दूसरे को मारा मारी करने वाले, संकल्प चलाने वाले इकट्ठे होते हैं। तो ऐसा शिवालय है बाबा का स्थापन किया हुआ। द्वितीय स्वर्ण रावण की स्थापना है, जहां विषय विकारी संकल्प चलते हैं। और बाप की स्थापना शुद्ध संकल्पों वाला घर तैयार करना, संगठन बनाना, वाइसलेस वर्ल्ड और विशेष वर्ल्ड। अभी तुम बैठे हो सतयुग सतगुरु की दरबार में, ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। बाप ही शांति का सागर है, वो बाप जब आए तब तू शांति का वर्षा दे, रास्ता बताए। कहाँ का? सदगति में जाने का और सतयुग में आने का। बाकी जंगल में शांति कहाँ से मिलेगी? कांटों के जंगल में तो कांटा लगा और अशांति हुई। इसलिए हार का मिसाल देते हैं कि शांति तो आत्मा के गले का हार है, इसे कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिर जब रावण राज्य होता है तब अशांति होती है। उनको तो कहा जाता है सुखधाम और शांति धाम, वहां दुख की कोई बात नहीं होती। महिमा भी सदा सतगुरु की करते हैं।
महिमा तो उसी की जाती है जो कुछ करके गया हो। गुरु की महिमा कभी नहीं सुनी होगी। ज्ञान का सागर वो एक ही बाप है। ऐसे कभी गुरु की महिमा सुनी है नहीं कि वो ज्ञान का सागर है। वो गुरु लोग जगत के पतित पावन तो नहीं हो सकते। वो तो एक ही निराकार देहद के बड़े बाबा को कहा जाता है। बड़े बाबा क्या साबित हुआ कि बड़े बाबा के साथ छोटा बाबा भी होगा कोई? तुम अभी संगम युग पर खड़े हो। एक तरफ है सबसे पुरानी दुनिया और दूसरी तरफ पावन नई दुनिया। पतित दुनिया में गुरु तो ढेर है। आगे तुमको इस संगम युग का पता नहीं था। जहां एक तरफ पतित गुरु ढेर के ढेर और दूसरी तरफ नई दुनिया बनाने वाला सतगुरु सिर्फ एक है। पहले इस संगम का पता नहीं था। दुर्गति करने वाले, गड्ढे में ले जाने वाले अनेक और ऊपर चढ़ाने वाला एक, ऐसे संगम का पहले नहीं पता था। अब बाप ने समझाया है ये है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि पुरुष अर्थात आत्माओं में उत्तम नंबरवार प्रत्यक्ष होते हैं। माला बनेगी, माला मन संगठन, तो नंबरवार मन के भी प्रत्यक्ष होंगे। जो बाप के जितने नजदीक होंगे वो पहले प्रत्यक्ष होंगे और माला में जितने ही फूल से दूर होंगे उतने ही बाद में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेंगे। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग के बाद फिर सतयुग आना है। पहले उत्तम से उत्तम जो पुरुष हैं, आत्माएं हैं, पाठधारी, उनकी प्रत्यक्षता होगी फिर सत्युग। चक्र फिरता रहता है, ये बुद्धि में याद रहना चाहिए। हम सब भाई भाई हैं तो बेहद के बाप से वर्षा जरूर मिलता है। ये कोई को पता नहीं है। भगवान को गिरकर भीतर में ठोक दिया है। भीतर मन उनको थोड़ी सी माया की चोट लगे कोई ने कुछ कह दिया, कोई ने कुछ कर दिया, उनको थोड़ी चोट लगी और मिट्टी के ठिकर की तरह, ढेले की तरह टूट पड़े तो उनको कहेंगे ठिकर बुद्धि। तो ऐसे ठिकर बुद्धियों में परमात्मा बैठता नहीं है। परमात्मा किस में बैठता है? अटल निश्चय बुद्धि जो जो बता रहा है कि मौके को पार्ट बजाने वाली आत्मा होगी उसमें ही सदाकाल पार्ट बजाता है मुकर्रर रूप से।
और बाकी बाकी जितना जैसा जैसा जिसका निश्चय उतनी उसकी उसमें प्रवेश करके बाप विजय कराते हैं। आत्माएं सर्विस नहीं करती, सर्विस कौन करता है? बाप दादा स्वयं प्रवेश करके बच्चों में सर्विस करते हैं और उनकी विजय दिलाते हैं। तो हम बच्चों को भी ठिकर बुद्धि माना मिट्टी के ढेले के मुआफिक नहीं बनना है कि थोड़ी सी ठोकर लगे और फट से टूटने लग पड़े, बिखरने लग पड़े। बिस्तर भीत कहते हैं दीवार को, जो ज्ञान के मार्ग में, ज्ञान के असली ज्ञान के प्रचार प्रसार में, ज्ञान किसे कहा जाता है? पहचान, जानकारी, बाप की जानकारी, अपने आत्मा की यानी कि जन्मों की जानकारी, उस ज्ञान के विस्तार के कार्य में, क्योंकि अनेक जन्म आत्माओं का हिसाब किताब सब क्लियर होना है, तो उस ज्ञान के विस्तार के कार्य में जो दीवार की तरह विघ्न बनकर के अड़ जाते हैं, न खुद आगे बढ़ते और न दूसरों को आगे बढ़ने देते, ऐसे भीतर बुद्धियों में भी परमात्मा प्रवेश नहीं करता है। इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। इसको कि भीतर भीतर बुद्धियों में भी परमात्मा को व्यापक समझ लेते हैं। कितने बड़े बड़े पोजीशन वाले मनुष्य हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। गुरुओं का मान जाति होता है, हैं बड़े बड़े पोजीशन वाले, लेकिन मान किसका जाति करते हैं? गुरुओं का। बड़े बड़े गुरु भी हैं, बाप कहते हैं मैं तो तुम सबकी सदगति करता हूं। सबकी मन चाहे बड़े बड़े आदमी हो और चाहे बड़े से बड़े गुरु हो, उन सबकी सदगति करने वाला। अभी तुम सेंसिबल बने हो, आगे तो सेंसलेस थे, कुछ भी पता नहीं था। इन देवताओं के आगे जाकर तुम कहते थे हम सेंसलेस हैं, हमारे में कोई गुण नहीं। सेंसिबल अर्थात गुणवान, कहते थे आप गुणवान हैं, हमारे में कोई गुण नहीं, आप एक तरफ करो। अब ये देवताओं के चित्र तरफ करेंगे क्या है? तरफ कौन करेगा? जड़ चित्र करेंगे या कोई चैतन्य चित्र होगा जो तरफ करेगा? तो जानते नहीं है। तो रहम दिल कौन है? और कैसे रहम करते हैं? कैसे भी हैं ओ गॉड फादर रहम करो, कौन कहते हैं? हैं? कौन कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो? बच्चों में भी कौन से कैटेगरी के? क्रिश्चियंस गॉड फादर तो कौन कहेंगे? क्रिश्चियंस ही कहेंगे कि रहम करो। कोई भी दुख की बात आती है तो बाप को जरूर याद करते हैं। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे क्या? ओ गॉड फादर बस बस अब रहम करो, तुम ऐसे नहीं कहेंगे है?
ہم یہ کہیں گے کہ رحم کرو, اس کا مطلب بابا بے رحمی ہے جو ہم بابا سے کہیں گے رحم کرو. کرسچینس گاڈ فادر کہتے ہیں اور کہیں گے کہ گاڈ فادر رحم کرو, تو ٹھیک ہے ہم بابا کے بچے ہیں, لیکن ہم تو جانتے ہیں کہ بابا سے زیادہ رحم دل تو کوئی ہو نہیں سکتا. گرو لوگ بے رحمی ہو سکتے ہیں لیکن بابا تو ہر بات میں, ہر طریقے سے, ہر پرستھتی میں ہم بچوں کے لیے رحم دلی پارٹ بجاتا ہے, کبھی بے رحمی کا پارٹ نہیں بجاتا. کوئی بھی دکھ کی بات آتی ہے تو تم ایسے نہیں کہیں گے, مطلب تم جانتے ہو کہ باپ بے رحم نہیں ہو سکتا, باپ سے زیادہ رحم دل تو کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. باپ تو وچتر ہیں, وہ تمہارے سامنے بیٹھے ہیں تب تو نمستے کرتے ہیں, مات پتا باپ دادا کو باپ دادا کا یاد پیار نہیں, روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے. تو نمستے نمن, تم کو نمن کرتا ہوں, تم بچوں کے سامنے جھکتا ہوں, تو جو جھکتا ہے اس کے لیے یہ کہا جائے گا کہ وہ بے رحم بنتا ہے. تو وہ باپ تمہارے سامنے بیٹھے ہیں تب تو نمن کرتے ہیں, نمستے کرتے ہیں, ہے تو روحانی باپ. روحانی کا مطلب صرف بندو 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 کا باپ بندو نہیں, سامنے بیٹھے ہونے کا مطلب ہے تو ساکار میں لیکن اسٹیج کیسی ہے, نراکاری. تم سب ہو چترداری اور میں ہوں وچتر. تمہارا سب کا چتر رہتا ہے اور کچھ نہیں چتر رہے گا تو سوکھم چتر ہی رہے گا, سوکھم شریر اس کا بھی چتر ہوتا ہے. ایسے نہیں سوکھم شریر دھاری جو بھوت پریت ہوتے ہیں ان کا چتر نہیں ہوتا ہے, ان کا بھی ہوتا ہے. تو تم سب ہو چتر دھاری اور میں ہوں بھی. میں کبھی چتر دھارن نہیں کرتا, میرے چتر کا کوئی نام بتاؤ. بس شیو بابا ہی کہیں گے. میں نے یہ لون لیا ہے تو بھی پرانے سے پرانی جوتی, جو لون لیا ہے وہ بھی پرانی سے پرانی جوتی, اس میں ہی میں آ کر کے پرویش کرتا ہوں. جس سے جاتی پرانی کوئی جوتی ہوتی نہیں. پرانی جوتی کا مطلب زیادہ سے زیادہ جس نے جنم لیے ہو. زیادہ سے زیادہ جنم کون لیتا ہے؟ پرشن والی سوچ کے لیے کہیں پرشن والی سول کے لیے کہیں تو انہوں نے 69 میں شریر چھوڑ دیا. ان کو تو ستیگ میں جا کے جنم لینا ہے, 69 سے لے کر کے اور ستیگ میں جب تک جنم نہ لے تب تک شریر نہیں ملے گا. तो कम से कम 50 वर्ष ऑलराउंड पार्ट में से कम हो जाता है। संगम युग की किस्म की बात नहीं है, कौन सी किस्म की बात है, सत्युग की किस्म की। तो मैं किसने आकर प्रवेश करता हूँ, जो पुराने से पुरानी जूती है, माना 84 जन्म पुरानी, एक दिन भी कम नहीं। इस शरीर की महिमा कहाँ करते हैं क्या, ये तो पुराना तमो प्रधान शरीर है। एडाप्ट किया है तो महिमा करते हैं क्या, नहीं, ये तो समझाते हैं ऐसे था, अब फिर मेरे द्वारा गोरा बन जाएगा, इसके द्वारा मेरे द्वारा मीडिया कौन हुआ, द्वारा मन मीडिया, तो कौन मीडिया हुआ, मैं, मेरे द्वारा ये गोरा बन जाएगा, कौन, किसके लिए कहा, यह जब कहते हैं तो कहते हैं हमेशा ब्रह्मा के लिए, कृष्ण के लिए, और तुम शब्द जब कहते हैं तो जरूर बाबा के सामने सन्मुख कोई ऐसा बच्चा है जिसको सारी वाणी सुनाई जा रही है, भले ही मर्जी करके बोलते हो, तो सन्मुख उसको इमर्ज करके बोला जाता है और उस बच्चे से ही बात की जाती है जो बच्चा कार्य संपन्न करने वाला है। इसलिए मुरली ने बोला, मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ, ये तो बीच में सुन देते हैं, कौन, तेईस नंबर के रजिस्टर में सातवें पेज पर अंतिम दो लाइन 3889 की लाइन पहला पेज। अब बाप कहते मैं जो सुनाता हूँ उस पर जज करो, अगर मैं राइट हूँ तो राइट को याद करो और उनका ही सुनो, मैं राइट हूँ तो राइट को याद करो, उनका ही सुनो। ये उनका दूर क्यों कर दिया, थर्ड पर्सन, मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सामने बैठे हो सेकंड पर्सन, फिर उनका क्यों कह दिया, जरूर ये पार्ट भविष्य में बजने वाला है, उसकी तरफ इशारा किया, जिसके द्वारा यह ब्रह्मा अर्थात कृष्ण की सोल भी पवित्र बनती है, उनका ही सुनो, अनराइटीय सुनो ही नहीं, उनको ईविल कहा जाता है जो अनराइटीय सुनाता है। टाक नो ईविल, सी नो ईविल, इन आंखों से जो कुछ देखते हो इनको भूल जाओ, क्या कहा, इन आंखों से किसको देखते हो, शरीर को, किसके शरीर को है, उन्होंने तो चित्र बना बना के लटकाए दिए, किसके, ब्रह्मा के, इन आंखों से देखते थे ब्रह्मा को, इन स्थूल आंखों से, तो इस स्वरूप को याद करने के लिए नहीं कहता हूँ, यह है विनाशी स्वरूप, विनाशी को याद करेंगे तो क्या होगा, विनाश को पाएंगे, और अविनाशी को याद करेंगे तो अविनाशी बनेंगे, तो उनको याद करो जो इनको भी पतित से पावन बनाने वाला है। इन आंखों से जो कुछ देखते हो उनको भूल जाओ।
और जो भविष्य में पाए से परमात्मा पाए से बजने वाला है
उनको याद करो।
वो पार्ट इन आंखों से दिखाई देगा
नहीं,
क्यों क्यों? साकार शरीरधारी नहीं होगा क्या? साकार शरीरधारी तो होगा, लेकिन कोई ये कहे कि हम जाके दर्शन करें आए तब हम निश्चय करेंगे, तो उसे खाक भी निश्चय नहीं होगा। क्योंकि जो ज्ञानी तू आत्माएं होंगी जिन्होंने मुखवंशावली बाप के बच्चे ब्राह्मण बन करके ज्ञान की बातों पर मनन चिंतन मंथन किया होगा, वो ही उस बाप के स्वरूप को पहचान सकेंगे। नहीं तो देखने में साधारण साधारण स्वरूप देखने में आएगा, उसको इन आंखों से पहचानना नहीं जा सकता। तो इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो सब भूल जाओ, और तीसरे नेत्र से जो तुमको दिखाई पड़ता है सुप्रीम सोल परमात्मा पांचधारी उसको याद करो। दूसरा पेज, अभी तो जाना है अपने घर, फिर वापस अपने सुखधाम में आएंगे, बाकी तो ये सब जैसे कि मरे पड़े। क्या यह सब माने कौन? यह जिसने प्रवेश किया विनाशी स्वरूप, और यह सब जो इस विनाशी स्वरूप को याद करने वाले, ये सब मरे पड़े हैं जो इन आंखों से दिखाई पड़ते हैं। और तुमको कहां वापस आना है? सुखधाम में। कब आएंगे वापस? सतयुग में या ऐसे संगम युग में ही? संगम युग में ही ऐसी स्टेज बनेगी कि हम जीते जी इस देह और देह के संबंधियों की पुरानी दुनिया से मरेंगे, और मर करके वापस हम शांत धाम में निसंकल्पी स्टेज में टिक जाएंगे। जो पाना था सो पा लिया, अब कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्र अविद्या। मेरा खिलाफ। तो ये सब जैसे कि मरे पड़े, टेम्पररी है ना। विनाश में जो टेम्पररी होंगे उन सब का विनाश हो जाएगा, और बचेंगे कौन? जो परमानेंट होंगे। बीज जीत का कभी विनाश नहीं होता। तो सारी सृष्टि के जो बीज हैं रुद्रमाला के मण के, और उनकी विशेष फॉलोअर साथ में, वो बचेंगे न? ये पुराने शरीर होंगे और न ये दुनिया हो। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया के लिए। क्या था? कहां के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं? जो आने वाली संगम युग की नई दुनिया है हम उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो ऊंचे ऊंची प्राप्ति कराने वाली है। इस दुनिया के मान मर्तबे के लिए हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। इसके लिए क्या डायरेक्शन दिया? इस दुनिया का कोई मान मर्तबा तुम बच्चों को नहीं लेना। फिर वर्ल्ड की इसी जागृति रिपीट होती है, तुम अपना राज्य भाग ले रहे हो। जानते हो कल्प कल्प बाप आते हैं राज्य भाग देने। तुम भी कहते हो बाबा कल्प पहले भी हम मिले थे, वर्षा लिया था, नर से नारायण बने थे, बाकी सब एक जैसा मर्तबा तो नहीं पा सकते। नर से नारायण एक बनेगा या सब बन जाएंगे? नर से नारायण तो एक ही बनेगा, लेकिन बाकी सब नारायण जैसे नंबर वार बन सकते हैं।
नंबर वार तो होते ही, ये है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। स्पिरिचुअल फादर पढ़ाने वाला है, पढ़ाने वाला कौन है? स्पिरिट। उसके पास और कुछ अपना नहीं है, क्या है? स्पिरिट माना, स्पिरिट माना आत्मा। उसके पास जो भी पावर है वो कोई स्वर्ग के सोने के महल मानिया देने वाली पावर नहीं है, बहुत सी पावर है, स्पिरिचुअल पावर। उमंग उत्साह बढ़ाने वाला है, ऐसी हिम्मत बढ़ाए देता है कि बाहुबल से जो प्राप्ति नहीं कर सके बड़े बड़े राजाएं हिटलर और नेपोलियन जैसे, वो स्पिरिचुअल पावर से, आत्मिक स्टेज से, विल पावर से वो प्राप्ति करा देता है। बच्चे भी पढ़ाते हैं, कोई प्रिंसिपल का बच्चा होता है तो वो भी उसी सर्विस में लग जाता है, स्त्री भी पढ़ाने लग जाती है, बच्ची भी अच्छी रीति पढ़े तो पढ़ाई करती है, परंतु वो दूसरे घर में चली जाती है। यहाँ तो कायदा नहीं है बच्चियों को नौकरी करने का, कहाँ कहाँ कायदा नहीं है बच्चियों को नौकरी करने या कराने का, बाप के घर में वहां तो कायदा है, कहाँ? उन्हें तथा कथित ब्राह्मणों की दुनिया में ये कायदा है कि बच्चियों से भी सर्विस नौकरी करवाते हैं। नई दुनिया में पद पाने का सारा मदार है इस पढ़ाई पर। इन बातों को दुनिया नहीं जानती, लिखा हुआ भी है भगवान वाच, हे बच्चों मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, प्रजा नहीं बनाता हूँ। आधीन रहने वाली कौन, राजा या प्रजा? प्रजा होती है आधीन रहने वाली, और रानी, रानी भी आधीन होती है। विजयमाला के जितने भी मणके होंगे रुद्रमाला के मुकाबले, हम कैसे होंगे? सब आधीन रहने वाले होंगे। रुद्रमाला ये है साक्षात रुद्र की माला, शिव की माला, वो डायरेक्ट बाप के बच्चे हैं। तो मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, अधिकारी बनाता हूँ, आधीन बनना नहीं सिखाता हूँ। तो नौकरी करना कौन सिखाते हैं? गुरु लोग तो कन्याओं से भी कहते हैं कि तुम नौकरी करो और यज्ञ में हमारे इस मैटेरियल यज्ञ में अर्पण करो, क्योंकि उनके पास ज्ञान यज्ञ तो है नहीं। यज्ञ माना यज्ञ के, कौन से यज्ञ का नाम यज्ञ दिया बाबा ने? ज्ञान यज्ञ को यज्ञ नाम दिया, कोई स्थूल महल मानियों का नाम यज्ञ नहीं है। कोई मॉडल थोड़े ही बनाता हूँ। ऋषि के हरिद्वार में क्या किया है, अजमेर में क्या किया है, मॉडल बनाया है। मैं कोई मॉडल थोड़े बनाता हूँ। स्कूल सुखधाम और शांति धाम ईंटों का महल खड़ा कर दूंगा? ये सुखधाम और शांति धाम का वर्षा देता हूँ क्या कि जन म्यूजियम बना के खड़ा कर दूंगा? तुम समझते रहोगे हमको ये वर्षा मिल गया बाप से, तो जड़ मॉडल नहीं बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? चैतन्य लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ, जैसे देवियों के चित्र बनाते हैं। ऐसे कोई मैं मॉडल नहीं बनाता। मॉडल बनाना, देवियों के चित्र बनाना, ये किसका काम है? ये तो तथाकथित ब्राह्मणों का काम है, मेरा काम ये नहीं है। तुम तो पढ़ करके वह पद पाते हो, वो तो मिट्टी के चित्र बनाते हैं। कौन मिट्टी के चित्र कौन बनाते हैं? दुनिया वाले कि ब्राह्मणों की दुनिया में? ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो मॉडल बनाए जाते हैं, जो प्रभात फेरी निकाली जाती है, उनमें देवियां बनाते हैं, वो मिट्टी की तो नहीं होती है तो चैतन्य, लेकिन देह बांधने आकर के बैठते हैं डट के, बस हाथ पांव हिले नहीं, बल दर्द होता रहे। तो वो तो मिट्टी के जड़ चित्र बनाते हैं पूजा करने के लिए। यहाँ तो आत्मा पड़ती है, तुम फिर संस्कार ले जाएंगे पढ़ाई के, जाकर के नई दुनिया में शरीर लेंगे। पढ़ाई कौन सी है? आत्मनिर्भर बनने की पढ़ाई है, स्वतंत्रता की पढ़ाई है, या अधीन होने की पढ़ाई है? वहां तो देवियां बना देते हैं, मैंने कह दिया ऐसे चुपचाप बैठे देना, हिलना डुलना नहीं, तो अधीन हुए या स्वाधीन हुए? वो तो अधीन देवियां बन गई। तुम संस्कार ले जाएंगे पढ़ाई की, कौन सी पढ़ाई है हमारी? हमारी पढ़ाई है स्वाधीन बनने की, राजा बनने की। प्रजा तो उनका निकालना काम है, उनका काम क्या है? प्रजा निकालना। और हमारा काम क्या है? राजा रानियों को निकालना। कम से कम राजा रानी नहीं निकाल सके तो जन्म जन्मांतर के प्रिंस प्रिंसेस को तो निकालें, राजकुल की आत्माएं तो निकालें। कितनी संख्या है उनकी? 16,108। इससे बाद वाला हमारा काम नहीं। वारसदार बनते हैं व्यक्तिगत सेवा, बाकी जो सामूहिक सेवाएं चलती हैं उनसे कोई राजा नहीं तैयार होते, राजघराना तैयार नहीं होता। तो तुम जाकर नई दुनिया में शरीर लेंगे, दुनिया खत्म नहीं होती है, सिर्फ एज बदलती है। गोल्डन एज, सिल्वर एज आ गया, 16 कला फिर 14 कला, दुनिया तो वही चलती रहती है, नई तो पुरानी होती है। बाप तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं क्या? भजनी त्रेता का राम बनाते हैं बाप तुमको, राजाओं का राजा बनाते हैं। फिर फेलियर बना के राम कौन बनाता है? फेल करना किसका काम? माया रावण का काम है तुमको फेल करना। ऐसे कर्तव्य करेंगे, ऐसी बातें करेंगे कि फेल कर देंगे। और बाप का काम है तुमको स्पिरिचुअल नॉलेज देना, तुम्हारी स्पिरिट में पावर भर देना। उनका काम है उमंग उत्साह ठंडा कर देना, और बाप का काम है उमंग उत्साह बढ़ा देना। और कोई की ऐसी ताकत नहीं जो ऐसी पढ़ाई पढ़ा सके जिससे तुम राजा बनो, अधिकारी। कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी बच्चों को पढ़ते पढ़ते माया अपना बनाए लेती है। बाप के ऊपर संशय पैदा किया और अपना बनाए लिया, पता नहीं बाप ने कहीं धोखा दे दिया तो
फिर भी जितना जितना जो पढ़ा है
सारा महत्व किस बात का है?
पढ़ाई का। जितना जितना जो पढ़ा है उस अनुसार वह स्वर्ग में जरूर आएंगे। की हुई कमाई जाएगी नहीं। बल माया रावण फेल करता रहे फिर भी जिसने जितनी पढ़ाई पढ़ ली वो जैक नहीं जा सकती। अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता। आगे चला आएंगे जाएंगे कहाँ? जैसे यज्ञ के याद में राम वाली आत्मा माया रावण ने फेल कर दिया फिर दोबारा जन्म लेकर आ गई, जाएंगे कहाँ? हट्टी तो एक ही है। आते रहेंगे शमशान में। जब मनुष्य जाते हैं तो फिर बड़ा बैराग आता है। बैराग आता है जहाँ सब मुर्दे हुए पड़े थे, सब जल मरे राख हो गए। साधु संत क्या करते हैं? राख भस्म लगा लेते हैं। वो तो भस्म लगाते हैं, राख बनते नहीं है। और तुम तो राख बन जाते हो। ते हनुमान जल भुन करके क्या हो जाता है? राख हो जाता है। बड़ा बैराग आता है। राग जो जुट गया है, राग माने प्रेम, जिन जिन देहधारियों से जहाँ जहाँ जैसा प्यार या राग जुट गया है वो सब ऐसा हो जाता है। विपरीत राग भी राग बैराग हो जाता है। बस ये शरीर ऐसे छोड़ने का है। कैसे छोड़ने का है? कि इस दुनिया से बिल्कुल बैराग आ जाए। कोई की बात सुनते हुए न सुनना, देखते हुए नहीं देखना, ऐसी स्टेज बन जाए। इसको कहते हैं जीते जी मरना। हाँ, अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ा वैराग कहाँ आता है? श्मशान घाट में। और शिव के मंदिर भी कहाँ होते हैं? श्मशान घाट में, जहाँ सब मुर्दे बनकर पड़े हुए हैं। जो देह अभिमान में जिंदा होगा वो बाप के पास नहीं रह सकता। बाप के पास कौन रह सकेंगे? जो मरे हुए होंगे वही बाप के पास रह सकेंगे। परमनाम में कौन रहते हैं? आत्मा रहती है कि देह वाले रहते हैं? नहीं। तो जो मिनी मधुबन बनाएंगे उसमें कौन रह सकेंगे? देह अभिमान वाले रह सकेंगे? नहीं। थोड़ा भी देह अभिमान आया और ऊपर से गिरा नीचे, जाओ उनकी दुनिया में, देह वालों की दुनिया में जाओ, फिर नीचे उतर से चले जाएंगे। तो श्मशान घाट में बड़ा बैराग आता है। बस ये शरीर ऐसे छोड़ने का है। कैसे? कि हम बिल्कुल राख हो जाए, देह अभिमान नाम निशान को भी न रहे। फिर हम पाप क्यों करें? जब हमको ये जीते जी मरना ही है तो पाप करने का मतलब क्या है? पाप करते करते हम ऐसे मर जाएंगे? ऐसे ख्यालात आते हैं उनको कहा जाता है शमशान बैराग। समझते भी हैं, जाकर दूसरा शरीर लेंगे
परंतु ज्ञान तो नहीं है ना। यहाँ तो तुम बच्चों को समझाया जाता है, इस समय तो खास मरने के लिए तैयारी कर रहे हो। वो तो है सामान्य मरना जीना, वो तो दुनिया में लगा ही रहता है, और यहाँ यहाँ है खास मरना। उनका तो है आम मरना, उनकी होती है आम मौत और हमारी है खास मौत। कौन सी मौत? कैसी मौत है? जीते जी मरना। क्योंकि यहाँ तो तुम टेम्परेरी हो, पुराना शरीर छोड़ पर नई दुनिया में जाएंगे। बाप कहते हैं बच्चे जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना पाप करते जाएंगे। हैं? किसे याद करेंगे? बाप को। कैसे बाप को? बिंदी बाप को। कौन कहते हैं? बिंदी। हैं? अरे बिंदी कैसे कहेगी? तो किस बाप को याद करते हो? बाप कहते हैं जरूर मुख होगा ना। कहते हैं बच्चे जितना तुम मुझे याद करेंगे, मुझे मन अविनाशी बाप को, अकाल मूर्त। ऐसे नहीं मूर्ति नहीं है, मूर्त तो है, साकार है, लेकिन अकाल माने जिसको काल विनाश हो जाएगा लेकिन उसको काल काल नहीं खाएगा, ऐसा ऑलराउंड पाटदारी है। तो जितना मुझे याद करेंगे उतना पाप करते जाएंगे। सहज थे, सहज भी है तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी है। अगर दे अभिमान पूर्वक याद करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट, बजाय सहजियों के क्या हो जाएगा? कठिन। बच्चे जब पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं तब समझते हैं माया की बड़ी युद्ध है। आप कहते हैं सहज है परंतु माया दीवा बुझा देती है। गुल बकावली की कहानी भी है ना, माया बिल्ली दीवा बुझाई देती। यहाँ तो सब माया के गुलाम। कहा संग में भी नई दुनिया में नहीं, इस संगम युग में भी पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों का संगम चल रहा है। तो अभी कौन सी दुनिया है? अभी कौन सी दुनिया है?
अभी पुरानी दुनिया।
पुरानी दुनिया है। तो यहाँ सब माया के गुलाम। तो माया को गुलाम बनाते हो कब? नई दुनिया। नई दुनिया में माया और प्रकृति दोनों तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। और यहाँ यहाँ रावण के 10 सिर है ना, 5 विकार और 5 प्रकृति के रूप। ये 10 हो क्या है? हमारे ऊपर कंट्रोलर। यहाँ सब माया के गुलाम। फिर तुम माया को गुलाम बनाते हो। जब नई दुनिया शुरू होगी तो सबसे पहले कौन दासी बनेगी? माया। माया जो अभी हमको फट से हमारी बुद्धि को घुमा देती है, निश्चय बुद्धि से अनिश्चय बुद्धि बना देती है बाप के ऊपर। फिर क्या करोगे? उस माया को तुम गुलाम बना दोगे। सारी प्रकृति तुम्हारी अदब में रहती है। अभी तो प्रकृति के तत्वों का विकराल रूप होता है तो हम डर जाते हैं। फिर क्या होगा? हम अचल बनेंगे और प्रकृति कितना भी विकराल रूप धारण करे हमारे ऊपर कोई शेप नहीं आएगा। वहां कोई तूफान नहीं, फैमन नहीं। प्रकृति को गुलाम बनाना, वहां कभी भी माया का वार नहीं होगा, यहां तो भूकंप भी आता है, धरणी हिलती है तो मकान गिर जाते हैं। देह में क्या हुआ, कन्याओं माताओं रूपी धरणी हिलती है तो जो देहद के संगठन है वो सब टूट जाते, बिखर जाते। हाँ, वहां तो फैमन नहीं होता और यहाँ अकाल भी पड़ जाता है, पानी भी नहीं मिलता और अन्न भी नहीं मिलता। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में योग की खुराक ही नहीं मिले, योग ही नहीं लगे। आत्मा का भोजन क्या है? याद। और ज्ञान का अंश मात्र भी न रहे, बुद्धि भी, बस दुनियादारी की बातें, लड़ाई झगड़ा और तंटे की बातें। तो अभी तो देखो प्रकृति और माया कितना तंग करती है। गायन है ना, मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम तेरा, वो फिर कहते हैं तू गुलाम मेरा। कौन कहते हैं? माया और प्रकृति। वो कहते हैं तुम मेरे गुलाम, अब हम क्या कहते हैं? हम बार बार अपनी ऐसी स्टेज बना लेते हैं और उनके प्रभाव में आ जाते। बाप कहते हैं अब हम तुमको गुलाम पने से छुड़ाने आया हूँ, राजाओं का राजा अधिकारी बनाने आया हूँ, तुम किसी के प्रभाव में न फंसो। प्रभावित माना प्रजा, क्या कोई की बातों से कोई प्रभावित हो जाए तो क्या कहेंगे कि ये प्रजा बनने वाली है। बाप कहते हैं अब हम तुमको गुलाम पने से छुड़ाने आया हूँ, तुम मालिक बन जाएंगे। ये आफत कौन देते हैं? बाप देते हैं ये आफत। वो गुलाम बन जाएंगे कौन? तुम मालिक बन जाएंगे और वो गुलाम बन जाएंगे। जरा भी चूचा नहीं होगी, यहाँ तो कितना चूचांग करते हैं। ये भी ड्रामा विनोद है, निश्चय बुद्धि बने रहो। होपलेस नहीं हो जाओ। तुम कहते हो बाबा माया बड़ा तंग करती है, तो क्यों नहीं करेगी? इनको कहा जाता है युद्ध का मैदान है? माया क्यों तंग करती है? माया कोई और चीज हो रही है, पूर्व जन्मों में हम ही ने हिसाब किताब जोड़ा है ना, एक बाप से तोड़ा और माया के साथ दस सिरों के साथ जोड़ा, तो वो तो अपना हिसाब किताब आके लेगी या नहीं लेगी? जरूर लेगी। माया को गुलाम बनाने के लिए तुम कोशिश करते हो तो माया भी पछाड़ती है।